ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में विश्व मंच को विस्तार से बताया कि पृथ्वी और मानव स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है और भारतीय पीढ़ियों से प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। वे कल रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लिए जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अगले साल ब्रिक्स की भारत अध्यक्षता के दौरान इसे सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन और नवाचार का निर्माण के रूप में फिर से परिभाषित किया जाएगा। श्री मोदी ने भारत के ब्रिक्स नेतृत्व के लिए संभावित फोकस क्षेत्रों की चर्चा की और आकस्मिक परिस्थितियों के लिए तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में अपनी सरकार की पहलों के बारे में मिशन लाइफ, एक पेड़ माँ के नाम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, हरित हाइड्रोजन मिशन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स के नेताओं के घोषणा पत्र में ग्लोबल साउथ के देशों की अधिकतर चिंताओं को शामिल किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के समापन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा सभी देशों ने खुलकर की। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र भारत के पड़ोसी देश को एक कड़ा संदेश देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पाद की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है।
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र के विकास, जनकल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। श्री रेड्डी कल जयपुर में 7 सितारा और 5 सितारा रेटिंग प्राप्त खदानों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।
माइनिंग सेक्टर आज विकास, जनकल्याण और पर्यावरण संरक्षण तीनों के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। माइनिंग सेक्टर में को प्रोत्साहन करना सरकार का जिम्मेदारी है और साथ साथ आम जनता में, रूरल एरिया में जो माइनिंग सेक्टर के आजू बाजू जिंदगी गुजारने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उस सेक्टर में जो गरीब लोग रहते हैं उनमें भी विश्वास दिलाना हमारा काम है।
बिहार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा लखनऊ और सहरसा अमृतसर सहित 4 नई अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा की है। सीमांचल के लिए एक नियमित जोगबनी इरोड ट्रेन की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि 1,156 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन परियोजना को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा पटना और दरभंगा में 53 करोड़ और 10 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उद्घाटन के लिए तैयार हैं। आगामी जनगणना के दौरान स्वयं गणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध होगा। ये पोर्टल जनगणना 2027 के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने कहा कि ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। टेनिस में पूर्व चैंपियन नोवाक जोकोविच ने कल ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को 6-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर लंदन में अपनी 16वीं बार विंबलडन 2025 के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।